आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
नमस्कार, मेरा नाम बिंदिया है। मैं मुंबई से हूं और मैं शिक्षा में रिसर्च का काम कर रही हूं। आज हम अपने इस आखिरी पड़ाव पर हैं, अर्थात आज हम आखिरी अध्याय 10 की चर्चा करना शुरू कर रहे हैं और ये कुछ भागों में है। और आज पहला जो भाग है हमारा, उसके माध्यम से आज हम जानेंगे कि हमने पिछले जो भी अध्यायों में समझा उसके पीछे का दर्शन क्या था, उसके पीछे की फिलॉसफी क्या थी। हमने जाना, सारे चैप्टर्स में हमने बार बार पढ़ा कि संविधान के मुख्य प्रावधान क्या हैं, ये प्रावधानों ने काम कैसे किया। हमने ये भी जाना कि संविधान बना कैसे, इसकी प्रोसेस को भी हमने जाना। पर ये भी तो सवाल एक मन में आता है कि हमें ये संविधान अपनाने की जरूरत ही क्यों लगी, क्यों हमारे जो नेता थे, हम खुद थे, हमने क्यों सोचा कि हमें अपने आप को संविधान के बंधन में बांधना है। बार बार संविधान सभा की बहस क्यों हुई, बहस की जरूरत क्या थी, और ये जो सारे प्रश्न हैं, ये जो सोच है, वही इस अध्याय के पीछे है। और हम आज जो विषयों पे चर्चा करेंगे वो है कि संविधान की मूलभूत विशेषताएं क्या है और इसके अंदर का दर्शन क्या है, इसकी फिलॉसफी क्या है, वो किन उद्देश्यों को पाना चाहता है, क्या ये उद्देश्य पाना जरूरी है और ये उद्देश्यों की सीमाएं क्या हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपना आखिरी अध्याय जिसका शीर्षक है संविधान का राजनीतिक दर्शन। तो ये जो संविधान का राजनीतिक दर्शन है, हम इसे शुरू कर रहे हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक खोल लें और पृष्ठ क्रमांक 221 पर आ जाएं। संविधान के दर्शन का आशय क्या है? अब हमने संविधान का दर्शन का एक तरीके से आप फिलॉसफी कह सकते हैं, उसके पीछे की सोच, वो जनरली एक जनरल टर्म्स में दर्शन होता है। तो देखिए, जब संविधान को हम समझते हैं तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी तक कि संविधान ने ये कानून बनाया, कानूनों की बात हो रही है संविधान में। और इसका मतलब है कि सिर्फ संविधान का काम कानून बनाना है, बाकी उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। ऐसा भी कुछ लोगों का ऐसा मानना था, उनका नजरिया था कि सिर्फ संविधान कानून बनाने का एक माध्यम है, उसका कोई नैतिक रोल नहीं है, मॉरलिटी उसकी नहीं है, उसका कोई फिलॉसफी नहीं है, राजनीतिक दर्शन नहीं है। और ठीक है, ये बात सच है कि जो भी कानून बनते हैं हमारे देश में या विश्व में, जरूरी नहीं है उन सब में नैतिकता हो। नैतिकता का अर्थ होता है कि आदर्शों से उसका कोई रिलेशन हो कानूनों का। पर बहुत से ऐसे भी कानून हैं जिनका आदर्शों से गहरा संबंध होता है। मतलब कानून एक तरीके से आप कहें, वो कहते हैं ना सबके लिए समान है, पर क्या कानून जो है उनका, जो हमारे जीवन के आदर्श होते हैं, क्या उनसे वो रिलेटेड है? तो उसके लिए हम उदाहरण देख सकते हैं कि कोई कानून कहता है कि भाषा या धर्म के आधार पर व्यक्तियों के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए, हमने हमारे मौलिक अधिकार पढ़े। तो इस तरीके से कानून क्या कहता है, भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसके लिए वो किस चीज का विचार देता है, समानता का, तो समानता होनी चाहिए और इसी का अधिकार वो हमें मौलिक अधिकारों के थ्रू देता है। तो ये जो समानता का अधिकार है वो कानून इसलिए बना क्योंकि हम लोग जो समानता है उसको इम्पोर्टेंट मानते, एक मूल्य मानते, एक आदर्श मानते हैं। एक समानता तो एक आदर्श ही है ना, इक्वालिटी तो सबके लिए होनी चाहिए। तो इससे इस बात को स्पष्टता मिलती है कि जो कानून है और नैतिक मूल्य, नैतिक मूल्य को आप आदर्श भी कह सकते हैं, इन दोनों के बीच में एक गहरा संबंध है। कानून और नैतिक मूल्यों के बीच गहरा संबंध है, और इसी कारण ये जो संविधान है, हमें इसको इस रूप में देखना चाहिए कि उसके पीछे भी एक नैतिक दृष्टि काम कर रही थी, और संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन का नजरिया अपनाने की जरूरत है। और ये नजरिया क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। कि देखिए, सबसे पहले कह रहे हैं कि संविधान सिर्फ एक कानून है। कुछ लोगों का ऐसा मानना था, पर ऐसा नहीं है। संविधान कानून भी है, साथ में वो कुछ आदर्श भी स्थापित करता है, कुछ मूल्य भी स्थापित करता है, और वो राजनीतिक दर्शन, एक पॉलिटिक्स की भी अपने कुछ आदर्श होने चाहिए, उसको भी बताता है। तो ये जो संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन है, उसमें तीन बातें शामिल हैं। पहली बात है कि संविधान कुछ अवधारणाओं के आधार पर बना है, और ये अवधारणाओं को हमें समझना जरूरी है। मतलब कि संविधान में कई शब्दों का इस्तेमाल हुआ, जैसे अधिकार, अल्पसंख्यक, नागरिकता, लोकतंत्र। इन सब के संभावित अर्थ हमें पता होने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ये भी जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, अधिकार का, लोकतंत्र का, इनके एक्चुअल में अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है। इसके अलावा हमारे सामने एक ऐसे समाज और शासन की व्यवस्था की तस्वीर भी साफ होनी चाहिए, जो संविधान की बुनियादी अवधारणाओं की हमारी व्याख्या से मेल खाती हो। मतलब संविधान का निर्माण जिन आदर्शों की बुनियाद पर हुआ है, उस पर हमारी पकड़ होनी चाहिए। जो भी आदर्श है, अगर समानता का आदर्श है, तो वो हमें क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पे ये समानता की हमें जरूरत है, और जहां पे क्या संविधान उसको अपना रहा है। तो ये जो व्याख्या है और अवधारणा है, ये दोनों आपस में मेल खानी चाहिए, ये दोनों अलग अलग नहीं होनी चाहिए। और तीसरी बात ये कि भारतीय संविधान को संविधान सभा की बहसों के साथ जोड़कर पढ़ा जाना चाहिए, ताकि हम जान सकें कि ये आदर्श कहाँ तक और क्यों ठीक है, और इनमें क्या सुधार करने हैं। तो किसी मूल्य को अगर हम कहते हैं कि संविधान का बुनियाद है, कोई भी मूल्य हम कहते हैं, कोई भी उसके कॉन्सेप्ट को कहते हैं कि ये भी बुनियादी है, तो हमें ये भी बताना जरूरी पड़ेगा कि मूल्य सही है, और अगर सही है तो क्यों है। तो क्या इसके बिना संविधान बन सकता था। तो इस तरीके के प्रश्न राजनीतिक दर्शन में किए जाते हैं। और संविधान के निर्माताओं ने जब भारतीय समाज और राज व्यवस्था को अन्य मूलों के बदले किसी खास मूल्य समूह से दिशा निर्देशित करने का फैसला किया, तो ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि उनके पास इस मूल्य समूह को जायज ठहराने के लिए कुछ तर्क मौजूद थे, भले इनमें से बहुत से तर्क पूरी तरह स्पष्ट ना हो। चाहे संविधान निर्माताओं के तर्क कितने भी कच्चे और अनगढ़ क्यों ना हो, ये कल्पना करना मुश्किल है कि संविधान में अंतर्निहित मूल्यों को जायज ठहराने के लिए उनके पास तर्क नहीं थे। देखिए, इसका मतलब है, ये जो इतना लंबा हमने पैराग्राफ पढ़ा, उसका अर्थ ये है कि जब हमारे संविधान निर्माताओं ने जो अवधारणाएं चुनी, जब उन्होंने मूल्यों की बात की, तो बहुत सारे से लोग थे जो उन्होंने कहा कि ये जरूरी है, नहीं है, उसमें बहुत सारे तर्क थे। और जरूरी नहीं है कि संविधान निर्माता हर तर्क का जवाब दे पाए, लेकिन उन्होंने जिस भी चीज को संविधान में रखा, वो सब ही कुछ न कुछ उनकी कोई वैल्यू थी, उनके मूल्य थे। तो इनको ये कहना कि सिर्फ उन्होंने कानूनी रूप से लिख दिया, नहीं, जो भी हमारे संविधान में चीज लिखी गई है, उसके पीछे एक आदर्श था। और संविधान के अंतर्निहित नैतिक तत्व को जानने और उसके दावे के मूल्यांकन के लिए संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन का नजरिया अपनाने की जरूरत है। ऐसा करना इस वजह से भी जरूरी है ताकि हम अपनी शासन व्यवस्था के बुनियादी मूल्यों की अलग अलग व्याख्याओं को एक कसौटी पर जांच सकें। यह बात स्पष्ट है कि आज के संविधान बहुत से आदर्शों को चुनौती मिल रही है, इन आदर्शों को संविधान में सूखे हुए फूलों के भांति सिर्फ रख भर नहीं दिया गया, बल्कि इन पर बार बार अदालतों में जीरा होती है और ये हमारे राजनीतिक जीवन के अभिन्न अंग हैं। तो जो भी मूल्य हैं हमारे संविधान के, उनको समझना, पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही जो मूल्य वही हमारे देश की शासन व्यवस्था को चलाते हैं। तो डेफिनेटली इनको बार बार इनकी व्याख्या होती है, कभी कोर्ट में इनको चुनौती मिलती है, कभी आम जनता इनको चुनौती देती है इन मूल्यों को। तो इन मूल्यों को बार बार समझना कि इनकी क्यों जरूरत थी, इन्हें क्यों रखा गया, ये सब इस पर बहस करने का जो लोकतांत्रिक सिद्धांत है वो बार बार हमारे सामने आता है। इसीलिए इसको समझना जरूरी है कि ये जो बुनियादी मूल्य हैं वो हमारे लिए क्यों जरूरी है। इन पर विविध राजनीतिक हलकों, विधायिका, राजनीतिक दल, मीडिया, स्कूल, विश्वविद्यालयों में विचार विमर्श होता है, बहस चलती है और सवाल भी उठाए जाते हैं। देखिए, जब आप कोई भी मुद्दा आता है, आप कोई एक मौलिक अधिकार का ही मुद्दा ले लीजिए या कोई एक राजनीतिक पार्टी का कोई मसला है वो ले लीजिए, आप देखिएगा हर जगह उस पर बहस चलती है। आप स्कूल में डिबेट होते हैं, विश्वविद्यालयों में चर्चा होती है, मीडिया आप आजकल देखते हैं, चैनल्स पे डिबेट होता है। तो ये सब चीजें हमारे संविधान के मूल्य ही हैं जिन पर चर्चा होती है। तो इन आदर्शों की व्याख्या अलग अलग ढंग से की जाती है और कभी कभी अल्पकालिक क्षुद्र स्वार्थों के लिए इनके साथ चालबाजी भी की जाती है। तो देखिए, ये जो हमारे आदर्श हैं, कई बार इनको जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करती हैं सिर्फ अपने लाभ के लिए। तो इससे भी हमको बचकर रहना है और इसी कारण से इस बात परीक्षा की जरूरत पैदा होती है कि संविधान के आदर्शों और अन्य हलकों में इन आदर्शों की अभिव्यक्ति के बीच कहीं कोई गंभीर खाई तो नहीं है। कभी कभी विभिन्न संस्थाएं एक ही आदर्श की व्याख्या अलग अलग ढंग से करती है। अब यही कारण है, देखिए हमने देखा कि ये जो आदर्श है, अब देखिए एक हमारी संसद है, एक न्यायपालिका है, मौलिक अधिकारों को लेकर आपने देखा था दोनों ने उसकी व्याख्या अलग अलग ढंग से की। न्यायपालिका ने कहा संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है वो होना चाहिए, संसद ने कहा वो नहीं होना चाहिए। तो जो ये मौलिक अधिकार हमारे संविधान में दिया गया पर दोनों ने इसकी व्याख्या अलग अलग की। तो हमें जरूरी है कि हम संविधान के जो अधिकार हमें जो दिया था हम न्यायपालिका को भी समझें उसने क्या आदर्श दिया और संसद को भी समझें। तो ये जो व्याख्याएं होती हैं अलग 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 संस्थाओं द्वारा उनकी तुलना हमें करनी पड़ती है और जरूरी भी है। और संविधान के आदर्श अपने आप में परम न सही परंतु हैसियत के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मूल्यों या आदर्शों की व्याख्या अलग अलग ढंग से की जाए तो इन व्याख्याओं के बीच विरोध होता है, यह जांचने की जरूरत आ पड़ती है कौन सी व्याख्या सही है। तो देखिए, ये फिर वही बात कह रहे हैं कि व्याख्या जरूरी है और जब दोनों दो कोई व्याख्या होंगी, तीन होंगी, तो उनमें डेफिनेटली विरोध होगा। तो जो संविधान में लिखा है वो ये नहीं है कि वही परफेक्ट है, उसको चेंज भी कर सकते हैं, परंतु वो महत्वपूर्ण तो है। तो संसद क्या कह रही है, न्यायपालिका क्या कह रही है, कार्यपालिका क्या कह रही है, ये सब किसी चीज की अगर व्याख्या करती है तो सबको हमें सुनना है, उनको समझना है। और कभी कभी ऐसा भी मौका आएगा कि हमें देखना पड़ेगा कि संसद सही है, न्यायपालिका सही है, इसमें सही कौन है। तो इस लिहाज से हमारा संविधान एक पंच की भूमिका निभा सकता है। जी हाँ, जो ये हमारा संविधान है, ये जो जांच परख में संविधान के आदर्शों का इस्तेमाल होना चाहिए। संविधान में जो लिखा है वो पंच, उसमें जो लिखा गया है वही निर्णय करेगा कि न्यायपालिका ठीक कह रही है, कार्यपालिका ठीक कह रही है या विधायिका ठीक कह रही है। तो यही बात हमें बार बार समझाई जा रही है। ये जो इतना बड़ा आपको ये जो पैराग्राफ है उसका सिर्फ यही कहना है कि जो मूल्य है, आदर्श है, उन पे बार बार व्याख्या होगी, बार बार विरोध आएंगे, कोई अपने लाभ के लिए उनको आदर्शों को छेड़ने की कोशिश करेगा, कोई अपनी अलग अलग व्याख्याएं देगा, लेकिन इन सब के बीच बहस तो जारी रहेगी, लेकिन संविधान जो है उसका रोल सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। वही डिसाइड करेगा कि जो भी बहस हो रही है वो सही है गलत है, वो निर्णय की क्षमता संविधान ही लोगों को देता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि इस लिहाज से हमारा संविधान एक पंच की भूमिका निभा सकता है। अब है संविधान लोकतांत्रिक बदलाव का साधन। तो हमने संविधान के बारे में पढ़ा, उसका अर्थ पढ़ा था, संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, ये सब हमने जाना। तो इससे एक बात तो हमें समझ में आई कि जो संविधान का सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट काम है कि वो सत्ता को निरंकुश नहीं होने देता। मतलब सत्ता जो है, जो ताकत है, वो उसने जनता को दे रखी है हमारे देश में। तो कोई भी सत्ता आयोग को निरंकुश नहीं होने देगा। जैसे हमने 1975 का मामला देखा, देखिए जब 42वां संशोधन हुआ, पूरी राजनीति बदल गई, लोगों को जेल में डाल दिया गया, परंतु 1977 में जनता की ताकत ने वो शासन को, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, उनको निरंकुश जब उन्होंने होने की कोशिश की, तो उनको निरंकुश नहीं होने दिया जनता ने। और जनता को ये ताकत कहां से मिली? संविधान से। तो संविधान सत्ता को निरंकुश होने से रोकता है, और वो किसी भी देश को या कोई भी राज्य की ताकत उसको बहुत ताकतवर नहीं होने देता। बल प्रयोग और दंड शक्ति पर राज्य का एकाधिकार माना जाता है। यदि ऐसे राज्य की संस्थाएं गलत हाथों में पड़ जाएं तो क्या होगा? देखिए, शक्ति तो सरकार में ही होती है। तो यहाँ पे जो राज्य शब्द का उपयोग हो रहा है, आप जो नेशन स्टेट इंग्लिश में पढ़ते हैं, मतलब राज्य यहाँ पर कोई, ये जो 29 राज्य है वो राज्य नहीं, राज्य आपने पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ा होगा कि राज्य जिसका अपनी सोवर्निटी होती है, अपनी पॉपुलेशन होती है, वो जो है वो अपने आप में अपने निर्णय लेता, वही एक राज्य है ना। तो राज्य दूसरों के अतिक्रमण से फ्री रहता है। मतलब एक तरीके से यहाँ पे राज्य मतलब देश की ही बात हो रही है। तो आप जब ये इस चैप्टर में बार बार जब राज्य शब्द का प्रयोग हो, तो आप मान के चले कि राज्य का अर्थ वो देश कह रहा है। तो कभी कभी होता है कि इतनी शक्ति अगर किसी सरकार को मिल गई तो वो गलत उसका उपयोग कर सकती है। और ठीक है, हमारी ये जो संस्थाएं हैं उनका निर्माण एक्चुअली हमारे लिए ही हुआ है, हमारे लिए रूल्स बनाती है, हमारे भलाई का काम करती हैं, लेकिन कभी कभी अगर इनको ज्यादा पावर मिल जाए तो ये हमारे अगेंस्ट भी जा सकती हैं। क्योंकि दुनिया में ऐसा हुआ है, आपने कई ऐसे लोगों का नाम सुना होगा जिन्होंने शक्ति प्राप्त करके देश को ही नुकसान पहुंचा दिया। और अगर ऐसा है तो हमें सत्ता के खेल के नियमों को इस तरह बनाना चाहिए कि राज्य की इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगे। संविधान ये बुनियादी नियम प्रदान करता है और राज्य को निरंकुश बनने से रोकता है। तो हमने देखा ही, हमारा जो संविधान है, एक तो उसने शक्तियों को उसको अलग अलग बांटा हुआ है, और फाइनल जो शक्ति है लोकतंत्र की, वो उसने जनता के हाथ में दी है ताकि कोई भी सरकार निरंकुश ना बने। संविधान हमें गहरे सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधन भी प्रदान करता है। इन सब के अतिरिक्त औपनिवेशिक दास्ता में रहे लोगों के लिए संविधान राजनीतिक आत्मनिर्णय का उद्घोष है और इसका पहला वास्तविक अनुभव भी। नेहरू इन दोनों को अच्छी तरह समझते थे। तो देखिए, जो संविधान है उसने हमें दो बातें इंपॉर्टेंट दी कि एक तो देश में शांति बनी रहे, उसके लिए लोकतंत्र की स्थापना हुई, और देश के जो लोग हैं, जो हम अंग्रेजों के गुलाम थे, हम कोई निर्णय नहीं ले सकते थे, तो अब हमें अपने आत्मनिर्णय, अपना निर्णय लेने का अधिकार मिला है। और इसी लिस्ट में नेहरू थे। उन्होंने ये भी कहा था कि जो संविधान सभा थी उससे उन्होंने कहा था, उनकी मांग थी कि पूर्ण आत्मनिर्णय की सामूहिक मांग, क्योंकि सिर्फ भारतीय जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से बनी संविधान सभा को ही बगैर बाहरी हस्तक्षेप के भारतीय संविधान बनाने का अधिकार है। तो नेहरू ने पहले क्या कहा था कि देश की जनता को अधिकार होना चाहिए अपने प्रतिनिधि चुनने का। और उन्होंने ये भी कहा था कि संविधान सभा सिर्फ ये नहीं कि जनप्रतिनिधि और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, वकील, यही सब उसमें हो, नहीं, यहाँ पर जो संविधान सभा बने वह स्वयं में राह पर चल पड़ा एक राष्ट्र है जो अपने अतीत के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे के खोल से निकलकर अपने बनाए गए आवरण को पहनने की तैयारी कर रहा है। भारतीय संविधान का निर्माण परंपरागत समाज की ऊंच नीच बंधनों को तोड़ने स्वतंत्रता समता और न्याय के युग में प्रवेश के लिए हुआ। तो पहली बात तो ये कही गई कि जनता को चुनने का अधिकार हो और जो संविधान सभा बनी उसमें सबको एंट्री मिली। ये नहीं कि सिर्फ ये अमीर हैं या ये बड़े वकील हैं या बड़े नेता हैं। जो संविधान सभा है वो ऊंच नीच के बंधनों से दूर हो और संविधान का जो निर्माण हो वो स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम समता इक्वालिटी न्याय और जस्टिस को लेकर संविधान सभा हमारे संविधान का निर्माण करे। तो इस नजरिए में संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत को पूरी तरीके से बदल कर रख देने की क्षमता है और इसी नजरिए के अनुसार संविधान की मौजूदगी सत्तासीन लोगों की शक्ति पर अंकुश ही नहीं लगाती बल्कि जो परंपरागत तौर पर सत्ता से दूर रहे हैं उनका सशक्तिकरण भी करती है। देखिए बिल्कुल जो वोट देने का अधिकार है वो तो हर आम नागरिक को है, चुनाव लड़ने का अधिकार हर व्यक्ति को है। तो जो लोग सत्ता से दूर थे, जो गरीब हैं, कुचले लोग हैं, जो बहुत पीड़ित थे, उनको भी संविधान ने बराबरी दी है। तो यही हमारा संविधान है कि जो लोग सत्ता से दूर रहे उनको भी सशक्तिकरण उनका किया गया। संविधान सभा की ओर मुड़कर क्यों देखें? अब ये बात भी है कि हम तो कह रहे हैं कि भविष्य का हमें निर्माण करना है, तो अब हम पीछे मुड़कर क्यों देखें कि संविधान सभा ने क्या किया था, क्यों किया था, उनके विचारों में क्या आधार था। लेकिन जब आप एक राजनीति के विद्यार्थी हैं तो आपको समझना बहुत जरूरी है कि क्यों हमें अपने अतीत को भी साथ में लेकर चलना है। तो आप अमेरिका का उदाहरण लें, वहां का जो संविधान है वो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा गया और उस युग में जो भी उसके मूल्य थे उनको अब इस समय कहा जाता है 21वीं सदी में कि वो बेतुके थे। परंतु भारत में स्थिति अलग है क्योंकि यहाँ संविधान निर्माताओं के समय जो स्थिति थी और वो जो अब हम जो आज स्थिति में है उसमें कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं आया। देखिए हमारे देश में जब से संविधान लागू हुआ तब से कोई ऐसा रेवोल्यूशन नहीं हुआ, तो समय ऑलमोस्ट हमारा सेम है और मूल्यों आदर्शों अवधारणाओं के लिहाज से हम लोग संविधान सभा की सोच और समय से अलग नहीं हो पाए। हमारे संविधान का इतिहास अब भी हमारे वर्तमान का इतिहास हो सकता है। तो ये आपको समझना है कि देखिए अमेरिका में क्या हुआ कि बहुत पहले संविधान लिखा गया लोगों के, उस समय जो उन्होंने संविधान लिखा और अब के मूल्यों में बहुत टकरावट है। परंतु अभी हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है, अभी हमें 70 साल ही हुए हैं, तो पुरानी स्थिति और अभी की स्थिति में कोई अंतर नहीं है। इसी यही कारण है कि आज भी हमारी सोच हमारी संविधान सभा की तरह ही है और हमारे कानूनी और राजनीतिक व्यवहार बर्ताव के पीछे जो असली बात है उसे हमने ऐसा लगता है कि भुला दिया हो। क्योंकि देखिए कालक्रम में हमने उन्हें स्वाभाविक मान लिया हो, हमारे बहुत से कानूनी और राजनीतिक व्यवहारों के जो पीछे असली बात है वो पृष्ठभूमि में चली गई हो, हमारी चेतना के पर्दे से उतर गई हो, भले ही वही बात पहले हमारे व्यवहार बर्ताव की बुनियाद के रूप में स्वीकार की गई हो। तो जब तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे तब तक भूले रहना हानिकारक नहीं होता। तो यही कह रहे हैं कि आज भी जो भी हमारे उस समय हुआ और अभी जो हुआ है उसके पीछे उसको हम उन बातों को अभी ज्यादा नहीं वैल्यू देते हैं। इसका कारण ये है कि अभी सब ठीक चल रहा है, मतलब संविधान सभा ने बहस क्यों की, संविधान सभा ने ऐसा ये आदर्श क्यों लिया, उन्होंने ये आदर्श क्यों नहीं लिया, अभी हम उस पृष्ठभूमि पर ज्यादा नहीं जाते हैं। क्योंकि उन्होंने जो भी आदर्श बनाए आप आज भी देखें वो सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। तो यही कारण है कि हम आज भी अपने संविधान की वैल्यू करते हैं। लेकिन जब संवैधानिक व्यवहार बर्ताव को चुनौती मिले खतरा मंडरा या उपेक्षा हो तब इन पर अपनी पकड़ बनाए रखना जरूरी हो जाता है। हाँ, तो ये जो अभी तक तो सब अच्छा चल रहा है, लेकिन जब लगा कि भाई ये खतरा होने वाला है, तब जरूरी है कि हम इन आदर्शों की फिर से उसको वैल्यू करें, उसको समझें कि कहाँ गड़बड़ हो रहा है। ऐसे में इन व्यवहारों बर्तावों के मूल्य और अर्थ को समझने के लिए संविधान सभा की बहसों को मुड़कर देखने के सिवाय हमारे पास कोई चारा नहीं रहता। संभव इस क्रम में हमें और पीछे यानी उपनिवेशिक भारत में जाकर पड़ताल करनी पड़े, इसलिए अपने संविधान के मूल में निहित राजनीतिक दर्शन को बार बार याद करना टटोलना हमारे लिए जरूरी है। हम पृष्ठ क्रमांक 225 पर है। तो अब यही बात हो रही है कि हम जब तक अच्छा चल रहा है तब तक तो ठीक है, हम अपने संविधान के आदर्शों को भी मानते हैं और हम इस बहस में नहीं पड़ते कि उन्होंने ऐसा क्यों लिखा था, ये क्यों नहीं लिखा था। तो जब तक अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर देश में कोई दिक्कत आती है तब जरूरी होगा हमारे लिए कि हम वो जो संविधान सभा की बहस है उसको याद करें कि उन्होंने ये आदर्श क्यों उठाए थे। जैसे लोकतंत्र का आदर्श है, वो क्यों उन्होंने उठाया, तो उसकी हमें पड़ताल करनी पड़ेगी। और सिर्फ संविधान सभा की बहस नहीं, उससे पहले जो हम गुलाम थे उसको भी हमें सुनना पड़ेगा कि भाई हम गुलाम थे इसीलिए हमारे संविधान सभा के लोगों को पता था कि आजादी क्या होती है और इसीलिए हमें लोकतांत्रिक बनाया गया। और अगर आज हम उस लोकतंत्र की वैल्यू ना करें तो इसका मतलब क्या है कि हम वापस गुलामी की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो बहस हुई थी उनके पीछे के इस दर्शन को हमें समझना है कि एक एक कॉन्सेप्ट जो संविधान में लिया गया संविधान सभा द्वारा उसकी इम्पोर्टेंस थी, उन्होंने कुछ न कुछ सोचकर ही उसे संविधान में डाला था। और संविधान सभा से पहले भी संविधान सभा ने कहां से सीखा, जो ब्रिटिश काल था जब हम गुलाम थे तब उनको महसूस हुआ कि एक देश के लिए क्या क्या जरूरी है। हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है, अब देखिए हम इतनी बहस हमने की, इतना पढ़ा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो अब हमें जानना है कि हमारे देश का राजनीतिक दर्शन क्या है, हमारे संविधान का दर्शन मतलब किस नींव पे ये टिका, इसकी फिलॉसफी क्या है। तो अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो कोई इसका एक दर्शन नहीं है। जैसे कोई कहते ना सिर्फ हमारा दर्शन शांति है, कोई कहता है हमारा दर्शन सिर्फ धर्म निरपेक्षता है, नहीं। तो भारत का संविधान है उसको हम किसी एक शीर्षक में नहीं बांट सकते क्योंकि इसमें बहुत अलग अलग मूल्य हैं। हम उदारवादी भी हैं, लोकतांत्रिक भी हैं, धर्मनिरपेक्ष भी हैं, संघवाद भी है, अल्पसंख्यकों के आदर्श भी हैं, उनके अधिकार भी हैं, आरक्षण भी है और एक देश की पहचान भी है। तो ऐसे छोटे 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 बहुत सारे विषय, ये सभी हमारे दर्शन हैं। तो ये जो संक्षेप में हमारा जो संविधान है वो स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय तथा एक नए किस्म की राष्ट्र एकता के लिए प्रतिबद्ध है। और इन सब के साथ एक बुनियादी चीज संविधान का जोर इस बात पर है कि उसके दर्शन पर शांतिपूर्ण तथा लोकतांत्रिक तरीके से अमल किया जाए। तो हमारा देश में कोई एक दर्शन नहीं है, एक सोच नहीं है सिर्फ राजनीति को लेकर। हमारे यहाँ बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, चाहे वो स्वतंत्रता हो, समानता हो, लोकतांत्रिक हो, सामाजिक न्याय हो, राष्ट्रीय एकता, ये सब हमारा राजनीतिक दर्शन है। और ये दर्शन क्यों है, क्योंकि इसमें ये भी कहा गया है कि ये शांतिपूर्ण ढंग से होने चाहिए, लोकतांत्रिक ढंग से देश में फैसले होने चाहिए। और यही कारण है कि हमारे संविधान ने लोकतंत्र और शांति को बहुत अहमियत दी। तो ये बेसिक जो स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, ये सब हमारे राजनीतिक दर्शन। अब समझते हैं हम एक एक इस पॉइंट को का पीछे का निहितार्थ किया था। अब है व्यक्ति की स्वतंत्रता। सबसे पहले आता है व्यक्ति की स्वतंत्रता। संविधान के बारे में गौर करने पर पहली बात ये पता चलती है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये तो है, आपको जब हमें हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो वो क्या है, वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता ही तो है। तो ये जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात है। ये ऐसा नहीं कि अचानक से कोई चमत्कार हो गया कि एक दिन सब बैठे थे अरे अरे अब हमें सबको स्वतंत्रता देनी। नहीं, आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 19वीं सदी के शुरुआती समय में ही राम मोहन राय ने प्रेस की आजादी का जब मांग की और जब प्रेस की आजादी की जब काट छांट हुई तो उन्होंने विरोध किया, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो प्रेस की आजादी पे प्रतिबंध लगा रहे थे। तो जो राजा राम मोहन राय थे उन्होंने कहा था कि व्यक्ति को अपनी जरूरतों की अभिव्यक्ति का साधन मिलना चाहिए और इसलिए जरूरी है कि जो प्रकाशन है उसकी उनको आजादी मिले। तो पूरा जो ये ब्रिटिश शासन था उस समय भारतीय प्रेस की आजादी की मांग उठती रही और आश्चर्य नहीं है कि आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे संविधान का अभिन्न अंग है। इसी तरह मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध हमें स्वतंत्रता प्राप्त मिली है। आपको पता होगा एक रोलेट एक्ट आया था, जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें क्या किया था कि हमारी स्वतंत्रता छीन ली गई थी। तो ऐसे कई मामले हैं कि जहां पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता मसलन अंतर आत्मा का अधिकार उदारवादी विचारधारा का अभिन्न हिस्सा है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का चरित्र मजबूत उदारवादी बुनियाद पर प्रतिष्ठित है। मौलिक अधिकारों से संबंधित अध्याय में हम देख चुके हैं कि भारतीय संविधान व्यक्ति की स्वतंत्रता को कितना महत्व देता है। आपने देखा उसको न्यायपालिका संरक्षण देती है और इसीलिए संविधान को अंगीकार करने के इतने वर्षों बाद भी कांग्रेस के प्रत्येक प्रस्ताव योजना विधेयक रिपोर्ट में व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उस पर बात होती थी। इसे यूं ही लिखने भर के लिए नहीं लिखा जाता था बल्कि एक ऐसे मूल्य माना जाता था जिस पर समझौता नहीं किया जा सकता। तो हमारा सबसे बड़ा जो राजनीतिक दर्शन का सबसे पहला पक्ष है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सबको अपने विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता है, मौलिक अधिकार में लिखा गया है और मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? न्यायपालिका। अब दूसरा विषय है इसमें सामाजिक न्याय। तो हम जब भारतीय संविधान की बात करते हैं हम कहते हैं उदारवादी है। उदारवादी का मतलब है कि व्यक्तियों को अपने हिसाब से जीने का एक तरीका रहता है जहां पर सामाजिक न्याय और जो सामुदायिक जीवन है उसके ऊपर हमेशा व्यक्ति को तरजीह दी जाती है। मतलब एक व्यक्ति की फ्रीडम ज्यादा जरूरी है और सामाजिक न्याय उसके बाद में आता है उदारवाद के हिसाब से। लेकिन भारत में उदारवाद है परंतु थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हमारा जो देश है वो पहले सामाजिक न्याय की बात करता है। वो कह रहा है कि व्यक्ति फ्रीडम है व्यक्ति को, लेकिन जो सामाजिक न्याय है समानता की बात है वो सबके लिए सबसे पहले है। खासकर आपने देखा होगा कि जो आरक्षण दिया गया है वो सामाजिक न्याय की तो बात करता है कि कुछ लोगों के संग अत्याचार हुआ अब उनको सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। तो संविधान निर्माताओं का विश्वास था कि मात्र समता का अधिकार दे देना इन वर्गों के साथ सदियों से हो रहे अन्याय से मुक्ति के लिए अथवा इनके मताधिकार को वास्तविक अर्थ देने के लिए काफी नहीं है। इन वर्गों के हितों को बढ़ावा देने के लिए विशेष संवैधानिक उपायों की जरूरत थी और यही कारण था कि उन्हें विधायिका में भी आरक्षण दिया गया। मतलब वो ये भी कहा गया कि सिर्फ वोट का अधिकार सबको देने से बराबरी नहीं हो जाएगी, वो अपने लिए कुछ निर्णय ले सके, वो आगे बढ़े, इसीलिए उनके लिए विधायिका में भी सीटों का आरक्षण किया गया। संविधान के विशेष प्रावधानों के कारण ही सरकारी नौकरियों में इन वर्गों को आरक्षण देना संभव हो सका। तो ये भी कहा गया कि हमारे संविधान का एक राजनीतिक दर्शन, पहले हमने पढ़ा स्वतंत्रता, अब है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय मतलब जो लोग पीछे छूट गए उनको भी आगे लेकर आना है, बराबरी से सबको खड़ा करना है और यही सोच थी कि हमारे संविधान ने आरक्षण दिया। तीसरा पक्ष है विविधता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान। तो जो संविधान है वो कहता है सामुदायिक जीवन की इम्पोर्टेंस है और साथ में ये भी कहता है कि भारत में जो अलग अलग समुदाय हैं उनके बीच में बराबरी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए हमारे देश में ऐसा मुश्किल था क्योंकि इतने धर्म हैं, इतनी जातियां हैं और समुदायों के बीच में एक दूसरे के साथ आप देखेंगे अक्सर ऊंचे नीचे का चलता रहता है, खासकर जो जाति के मामले होते हैं। और समुदाय एक दूसरे की बराबरी को तब मानते हैं जब वो प्रतिद्वंदी बन जाते हैं, है ना। देखा होगा आपने कि खासकर धार्मिक मामलों में समुदायों में ऊंच नीच चलती रहती है। तो ये जो संविधान निर्माता थे उनके लिए बड़ी कठिन चुनौती थी कि ऊंच नीच और ये जो प्रतिद्वंदिता है उसके बीच में सारे धर्मों को बराबरी कैसे दी जाए, समुदायों को उदार कैसा बनाया जाए। तो समुदायों को मान्यता न देकर इस समस्या का समाधान आसानी से किया जा सकता था। अधिकांश पश्चिमी राष्ट्रों के उदारवादी संविधान में ऐसा ही किया गया, लेकिन ऐसा करना न तो देश अपने में कारगर होता न ही वांछनीय। इस कारण यह नहीं कि भारतीय अन्य लोगों की तुलना में समुदाय से कहीं जुड़े हैं, हर जगह के व्यक्ति के सांस्कृतिक समुदाय से जुड़े होते हैं और ऐसे हर समुदाय की अपनी परंपरा, मूल्य, रीति रिवाज, भाषा होती है। तो देखिए कई देश हैं वहां पर समुदाय विशेष को कोई उतना इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, मतलब वहां पर। लेकिन भारत में समुदायों को भी अधिकार दिए गए बराबरी करने की, तो इसके पीछे कारण था क्योंकि उनके भी अपनी भाषा है, परंपराएं, रीति रिवाज, उनको भी तो हमें सम्मान देना था। तो जैसे फ्रांस और जर्मनी है, वहां पर व्यक्ति भाषाई समुदाय का सदस्य होता है और इससे बड़ी गहराई से जुड़ा होता है। हम लोग सामुदायिक जीवन मूल्यों को ज्यादा खुले तौर पर स्वीकार करते हैं और यही बात हमें खास बनाती है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में अनेक सांस्कृतिक समुदाय हैं। जर्मनी तथा फ्रांस के विपरीत भारत में बहुत सारे भाषाई और धार्मिक समुदाय हैं। कोई समुदाय दूसरे पर प्रभुत्व न जमाए ये जरूरी था। इसी कारण हमारे संविधान के लिए समुदाय आधारित अधिकारों को मान्यता देना जरूरी हो गया। आपने देखा होगा ना कि कुछ हमने मौलिक अधिकार पढ़े थे जिसमें अल्पसंख्यकों को कहा गया कि आप अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। तो ये जो समुदाय है वो कहीं जो मेजॉरिटी है उससे पीछे ना छूट जाए, इसीलिए इनको हमारे देश में समुदाय पे आधारित जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनको इसीलिए अधिकार कुछ दिए गए ताकि वो अपनी संस्था चला सकें, अपनी शिक्षा का, संस्कृति का प्रचार प्रसार कर सकें। तो इस प्रावधान से पता चलता है कि भारतीय संविधान धर्म को सिर्फ व्यक्ति का निजी मामला नहीं मानता। मतलब धर्म आपका निजी मामला नहीं, वो देश से भी जुड़ा है क्योंकि सबको बराबरी मिलनी चाहिए। बहुसंख्यक समाज या धर्म अल्पसंख्यकों को दबा ना सके, इसीलिए अल्पसंख्यक समुदायों को हमारे देश में मौलिक अधिकार कुछ दिए गए हैं। तो ये भी हमारे देश का एक राजनीतिक दर्शन है। तो आज हम यही प्रश्न क्रमांक 228 पर हैं, यहीं पर हम विराम लेंगे क्योंकि हमने आज जो सीखा उससे कुछ बातें हमें क्लियर हुई हैं कि हम जानना चाह रहे थे कि तो हमने संविधान हमारा है वो बन गया, पर उसके पीछे सोच क्या थी, और जो सोच है वो उसके राजनीतिक दर्शन से पता चलती है। तो ये जो राजनीतिक दर्शन है हमारा वो हमारे संविधान के मूल्यों में ही कहीं ना कहीं छुपा है। और ये मूल्य क्या है? स्वतंत्रता का, समानता का मूल्य, धर्मनिरपेक्षता का मूल्य, सामाजिक न्याय का मूल्य, और इन सब में लोकतंत्र का मूल्य, शांतिपूर्ण ढंग से हर चीज का निपटारा हो, ये भी एक राजनीति का दर्शन का मूल्य है। और ये हमने जाना कि हमारे देश में जब संविधान निर्माण हुआ तो उसके पीछे भी कोई जो उन्होंने मूल्य लिए उसके पीछे क्या सोच थी। खास सोच ये थी कि जो भी हमने गुलामी की दास्ता में देखा है क्योंकि तो वो जो अनुभव रहे हमें उन अनुभवों से ही कुछ सीखना था। उस समय हमारे पास मतदान का अधिकार नहीं था, प्रेस की फ्रीडम नहीं थी, तो ये सारी चीजें हमें हमारे संविधान ने, जब हमारे देश का संविधान बना तो उसमें हमें मिली। तो अभी आज हमने कुछ राजनीतिक दर्शनों को समझा है जो आज हमने देखा, खासकर स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय को। आगे हम और भी समझेंगे कि और कौन कौन से हमारे देश के पक्ष हैं, और ये जो राजनीतिक दर्शन है उसके जो आदर्श है उसको कहां तक हमने पाया है, कितनी हमें सफलता मिली है, आगे की जो ऑडियो होंगे हम उसमें समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।